ओम शांति। कहा जाता है योगी पवन की तरह होते हैं, वो एक जगह रहते हैं लेकिन उपस्थिति सर्वत्र होती है। ऐसी ही एक हस्ती आज हम सभी के समक्ष है। हजारों हार्ट पेशेंट को बाबा की मदद से, अपनी सकाश से, शक्ति से और मेहनत से ठीक करने वाले ऐसे एक महान तपस्वी, महान योगी आत्मा, आदरणीय परम श्रद्धेय भ्राता सतीश गुप्ता जी हम सभी के समक्ष है। भाई जी का जोरदार तालियों से हम सभी स्वागत करेंगे। उनके ही शब्दों से, उनके ही बोलों से हम सभी सुनेंगे कि उनके दिल में कितना हम सभी के प्रति, सारे विश्व की आत्माओं के प्रति कितना प्यार है। दिलाराम बाप के दिल तख्त नशीन, दिल की दुआएं प्राप्त करने वाले, दिल से बाबा बाबा कहने वाले, दिल में बाबा के स्नेह को समाने वाले, दिल के हर संकल्प को बाप समान बनाने वाले, दिल कहे बाबा तुम्हें देखता रहूं, ऐसे सदैव एक बाबा दूसरा न कोई, दिल में बाबा को समाने वाले दिल के चिकित्सक आदरणीय डॉक्टर सतीश गुप्ता जी हैं। डॉक्टर सतीश गुप्ता जी का हम सभी सच्चे दिल से, हृदय से स्वागत करते हैं। दिल्ली में ही आपने अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरी की, हृदय रोग के चिकित्सा संबंधी आप अनेक महत्वपूर्ण संस्थाओं के सदस्य हैं। सोल माइंड बॉडी मेडिसिन के नवीनतम विचारधारा के रिसर्च वर्क पर आपको 2000 से 2007 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से आपको अवार्ड भी प्राप्त हो चुका है। सन 2000 में यूएसए में होलिस्टिक हेल्थ केयर पर आपको गोल्ड मेडल प्राप्त हो चुका है। वर्तमान समय ग्लोबल हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर पर आप कार्यरत हैं। बाप दादा को दिल से दिल तक प्रत्यक्ष करने की सेवा में आप सदैव बहुत बहुत व्यस्त रहते हैं। ऐसी महान हस्ती के लिए हमारे दिल से यही उद्गार निकलते हैं, पल पल से बनता है एहसास, एहसास से बनता है विश्वास, विश्वास से बनता है रिश्ता और रिश्ते से बनते हैं कोई ऐसे खास, जो देते हैं अंधेरे में सबको साहस और रहते हैं दिल के सदैव पास पास। ऐसे हैं हम सभी के आदरणीय सतीश गुप्ता जी। तो भाई जी से नम्र निवेदन है, आज का विषय है दिल में बाबा को किस तरह से समाकर हम बाबा की दुआओं के पात्र बने। आदरणीय भाई जी,
ओम शांति। आप सभी को याद है 18 जनवरी 2012 बाबा ने हमें होमवर्क दिया था, सभी को याद है बाबा के स्मृति दिवस पर बाबा ने हमें 2 मास का होमवर्क दिया था, याद है? जिनको याद है हाथ उठाओ, बाकी को याद नहीं? तो जो बाबा ने हमें होमवर्क दिया था 2 मास का, बाबा ने हमें होमवर्क दिया 2 मास का, 2 मास में समाप्त करना है। 18 जनवरी को दिया था। आज कौन सी तारीख है? 17 मार्च। कल कौन सी तारीख है? 18 मार्च। तो 2 मास कल पूरे होते हैं। वो होमवर्क क्या था? होमवर्क था कि हमें व्यर्थ समय और व्यर्थ संकल्प पर मुक्ति पानी है। व्यर्थ संकल्प मुक्त बनना है और व्यर्थ समय मुक्त बनना है, साथ साथ स्वराज्य अधिकारी बनना है। अर्थात स्व माने आत्मा, आत्मा का राज्य मन बुद्धि संस्कार पर रहे। मन बुद्धि संस्कार आत्मा के वश में रहे, जब चाहे हम जो संकल्प करना चाहे वो संकल्प करें, जहां अपने मन को स्थित करना चाहे वहां स्थित हो सके, अपनी बुद्धि हमारी बुद्धि दिव्य बन जाए और बुद्धि सही निर्णय दे, समय पर निर्णय दे, और संस्कार जो हमारे संस्कार दैवी संस्कार इमर्ज हो जाए, फरिश्तों के संस्कार इमर्ज हो जाए। और तीसरा बाबा ने कहा था कि मन को ऑर्डर पर मान चलाओ, या मन पर कंट्रोलिंग पावर रूलिंग पावर हो, और चेहरे और चलन द्वारा सेवा हो। अगर वैट समाप्त होगा तो चेहरे और चलन द्वारा सेवा होगी। तो मैं इस पर काफी अभ्यास करता रहा 2 मास, तो मैंने पाया कि ऐसे वैध संकल्प पर विजय पाना बहुत मुश्किल है, वैध समय पर विजय पाना बहुत मुश्किल है। जैसे हम किसी दिन कहते हैं ना कि हम आज क्रोध नहीं करेंगे, तो क्या होता है, क्रोध उस दिन और ज्यादा आता है। किसी दिन हम ऐसे सोचे ना, कोई दुनियावी दुनिया में हम किसी को बोलते हैं क्रोध मत करो। हमने हार्ट की रिसर्च में भी देखा, हमने 2 ग्रुप्स बनाए थे, एक ग्रुप वालों को राजयोग सिखाया, डाइट शाकाहारी सात्विक डाइट खिलाई और उनको रोज सुबह सुबह सैर करने के लिए कहा। दूसरे ग्रुप को हमने राजयोग नहीं सिखाया, वही डाइट खिलाई, वही एक्सरसाइज कराई, शाकाहारी डाइट खिलाई, भोजन खिलाया, सुबह सुबह सैर करने को बोला, राजयोग नहीं सिखाया सिर्फ। और उनको भी बताया क्रोध करने से अधिक हार्ट अटैक्स होते हैं, चिंता करने से बहुत अधिक हार्ट अटैक्स होते हैं, जल्दीबाजी करने से बहुत हार्ट अटैक होते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, डायबिटीज आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, दोनों को बताया। और जिनको राजयोग नहीं सिखाया उनको सिखाया कि आप आज से गुस्सा नहीं करना, चिंता नहीं करना, आप जो भी प्रार्थना करते हो, प्राणायाम करते हो, जो भी करते हो और ज्यादा करना। काफी सारे मुस्लिम भी थे उसमें, मुस्लिम भाई बहन भी थे, हमने उनको भी कहा आप नमाज और ज्यादा पढ़ना किंतु गुस्सा मत करना। तो हमने पाया, जब रिसर्च की तो पाया कि उनका गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया था, चिंता और ज्यादा बढ़ गई थी। हम इसको गुस्से को नाप सकते हैं, चिंता को भी नाप सकते हैं ना, ऐसे क्वेश्चनर्स होते हैं, इंटरनेशनल क्वेश्चनर्स होते हैं, जिसे चिंता को, गुस्सा को, जल्दीबाजी को, उदासी को हम नाप सकते हैं, खुशी हमारे अंदर कितनी उसको नापा जा सकता है। तो हमने देखा कि उनकी और ज्यादा, सिर्फ कहने से किसी को गुस्सा कम नहीं करो, चिंता नहीं करो, वो खत्म नहीं होता है, बल्कि और ज्यादा आता है। इसी तरह से जब हमने अभी हमने 2 मास पुरुषार्थ किया तो हमने कहा आज गुस्सा तो हम नहीं करते हैं कभी भी, चिंता भी नहीं करते हैं, किंतु जब हमने अभी जल्दीबाजी भी नहीं करते हैं, किंतु ये सूक्ष्म पुरुषार्थ बाबा ने हमें दिया था कि बच्चे व्यर्थ समय नहीं गंवाना है, व्यर्थ संकल्प नहीं करने हैं। तो हमने क्या पाया कि जिस दिन ये संकल्प किया कि आज व्यर्थ संकल्प नहीं आने चाहिए, तो और ज्यादा आ रहे थे। तो क्या करें, तो इसके लिए फिर हमने अभ्यास करना शुरू किया, प्रैक्टिस करना शुरू किया कि व्यर्थ संकल्पों के मुख्य कितने कारण हैं। मुख्य 5 कारण हैं। क्यों आते हैं वैध संकल्प? पहला तो क्या, मैं माया के थ्रू आते हैं ना वैध संकल्प, क्या, क्यों, कैसे, कब और कहां। क्या, ये क्या हुआ, क्यों हुआ ऐसे, ये ऐसा क्यों करता है, ये ऐसा क्यों करते हैं, ऐसे कैसे कर लेते हैं, बाबा के पुराने बच्चों को भी ऐसे कैसे कर लेते हैं, ऐसा कैसे बोल दिया उन्होंने, है ना, कब हुआ ऐसा और कहां। ये 5 बातों से अधिक वैध संकल्प आते हैं। तो फिर बाबा की अगली जो मुरली चली, बाबा ने कहा बच्चे सबसे बड़ी अथॉरिटी किसकी, अनुभव की अथॉरिटी है। और किस चीज का अनुभव होना चाहिए, जो स्वरूप है ना, स्वरूप की स्मृति का की अनुभूति में खोए रहना ही अनुभव है। जो मेरा स्वरूप है उसकी स्मृति कि मैं आत्मा हूं, मैं चमकता हुआ सितारा हूं, वो कविता है ना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, मैं एक चमकता हुआ सितारा मस्तक में चमक रहा हूं, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, मतलब मैं आत्मा एक छोटा अति सूक्ष्म चमकता सितारा जिन आंखों से दिखाई नहीं देता है, जो जब निकल जाता तो उसे कोई देख नहीं सकता है, वो सारे शरीर को चला रहा है। इस स्वरूप की अनुभूति में खोए रहना कि मैं आत्मा चला रहा हूं सारे शरीर को। कैसे चला रहा हूं? आत्मा के हम सात गुण सभी जानते हैं ना, तो आत्मा के सात गुण या एनर्जी कहो, ऊर्जा कहो, वो ऊर्जा यहां से निकल रही है और सारे शरीर में फैल रही है, जिससे आंखों से दिखाई दे रहा है, कानों से सुनाई दे रहा है, नाक से हम सूंघ सकते हैं, मुख से बोल सकते हैं, खा सकते हैं, हार्ट चल रहा है, फेफड़े चल रहे हैं, पेट में खाना पच रहा है। तो ये कार्य कैसे कौन कर रहा है? आत्मा कर रही है। तो इस स्मृति की अनुभूति में खोए रहना कि मैं आत्मा, सात गुणों से, सात एनर्जी मुझसे निकल रही है और वो सारे शरीर को चला रही है। तो मैंने पाया कि बजाय कि मैं वैर संकल्प पे कंट्रोल करूं, सारा दिन इसी अनुभूति में खोया रहूं। फिर बाबा ने जो मुरली बताई, 2 फरवरी को जो मुरली चली थी, बाबा ने कहा बार बार अभ्यास करने को कहा, बच्चे ये 5 स्वरूप का अभ्यास करो, अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप, इसकी स्मृति में खोए रहो, इसी अनुभूति में खोए रहो। अनुभव की अथॉरिटी क्या होती है? अनुभव की अथॉरिटी माना, कोई काम एक बार करते हैं ना, सपोज हमने एक बार कोई चीज खाई, उसका टेस्ट और अनुभव हो गया, तो बार बार खाई तो क्या होगा? अनुभव की अथॉरिटी हो गए। हमने 10 तरह के आम खा लिए, एक तरह का आम खाया, एक अनुभव, एक तरह के आम का अनुभव हो गया। अब 10 तरह के आम के अनुभव कर लिए तो हम अनुभव की अथॉरिटी हो गए कि 10 तरह के आम के हमने टेस्ट किए हुए। या सपोज हम एज ए पेशेंट डॉक्टर की बात करता हूं, जैसे मुझे बाबा ने निमित्त काम दिया है हार्ट के पेशेंट्स देखने का, हार्ट अटैक के पेशेंट्स देखने का, है ना, एंजाइना और हार्ट अटैक के पेशेंट्स देखने का काम दिया, उनका इलाज करने का काम दिया है, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, मोटे लोग जो हो जाते हैं उनका, है ना, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, इनका कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाता है, या हार्ट की वाल्व खराब हो जाती है, छेक हो जाते हैं हार्ट में, उनका इलाज करने का टाइम। तो जब मैं शुरू में डॉक्टर बना हार्ट का, तो मुझे थोड़े से पेशेंट देखने का अनुभव था, अथॉरिटी नहीं था। तो जैसे जैसे मैं पेशेंट देखता गया, बहुत सारे हार्ट के पेशेंट देखे, बहुत सारे हार्ट अटैक्स देखे, क्योंकि हर पेशेंट अलग अलग होता है। कहने को एक सिर्फ हार्ट अटैक आता है, कि तो जिसको भी हार्ट अटैक होता है उसके कारण अलग अलग होते हैं और उसके फिर इलाज करने में अलग अलग तरह की बातें आती हैं। तो जब हजारों पेशेंट देखे तो क्या हुआ, हजारों पेशेंट देखने के बाद अनुभव की अथॉरिटी बन गए। अब कैसा भी हार्ट अटैक का पेशेंट हो तो उसको हम देख सकते हैं आराम से, हमें कभी टेंशन में नहीं होती कि इसको हार्ट अटैक हुआ है तो इसको हम क्या करें, बड़े सहज उसको निवारण कर सकते हैं। अगर उसको धरती पर रहना तो बिल्कुल रहेगा, जाना है तो जाएगा, उसकी समय तो सबको जाने का होता है कि 1/4 पेशेंट तो चले जाते हैं, किंतु पर हमारे अंदर ये रहेगा कि हम जो बेस्ट ट्रीटमेंट पॉसिबल वो कर सकते हैं। ऐसे ही जब जो 5 स्वरूप का अभ्यास है, अनादि स्वरूप की स्मृति है, जैसे अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप, मैं आत्मा परम धाम में बाबा के साथ चमक रही हूं, सितारे तो आत्माएं तो बहुत सारी हैं, किंतु उसमें से मैं विशेष आत्मा चमक रही हूं, विशेष चमक रही हूं। इस स्मृति की अनुभूति में खो जाओ, और जितना हम खोते रहेंगे, बार बार उसमें खोए हुए रहेंगे, कार्य करते करते भी, चलते फिरते भी, सुबह सुबह सैर करते हैं उस समय भी, अमृत वेले के समय भी, कार्य करते समय भी खोए रहो। मैंने देखा पेशेंट को देखते देखते भी हम खोए हुए रह सकते हैं, पेशेंट देख रहे हैं, नब्ज देख रहे हैं, पेशेंट का हार्ट देख रहे हैं, पेशेंट को एग्जामिन कर रहे हैं, इलाज चल रहा है आईसीयू में, तो भी हम उसमें उसी अनुभूति में खोए रह सकते हैं, बल्कि काम और अच्छा होता है और एफिशिएंटली काम होता है। ऐसा नहीं कि मेरी काम नेग्लेक्ट हो जाती, मैं बाबा के साथ वहां पे स्मृति में वहां खोया हुआ हूं, तो ऐसा नहीं कि मेरे काम में, बल्कि मुझे और अच्छी टचिंग होती है इलाज के बारे में। आदि स्वरूप में क्या है, हम लाइट का ताज है, रतन जड़ित ताज है, सर्वगुण संपन्न है, 16 कला संपूर्ण है, संपूर्ण निर्विकारी है, मर्यादा पुरुषोत्तम अहिंसा परमो धर्म है। इस स्वरूप की स्मृति में जैसे खो गए, इसी अनुभूति में खो गए, स्वर्ग में चले गए, श्रेष्ठ सुख स्वरूप, सर्व प्राप्ति स्वरूप स्थिति है, प्रकृति सत्व प्रधान है, अपने महल में चले गए, है ना, अपने गार्डन में चले गए। तो इस स्वरूप में खो जाओ, इसके जितना हम बार बार चलते फिरते उठते बैठते अभ्यास करते जाएं, तो जितना हम इस स्वरूप की अनुभूति में खोते जाते हैं, यही स्थिति स्मृति स्वरूप की स्थिति है। तो बार बार इसके करने से ऑटोमेटिक क्या होता है कि अभ्यास इतना हो जाता है कि व्यर्थ आता ही नहीं, किसी बात में क्या क्यों होता ही नहीं, क्योंकि हमारी जो टोटल पर्सनैलिटी है वो सारी पवित्रता पे आधारित है। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है बेसिकली दिलाराम को, दिलाराम बाप को सदा दिल में कैसे समा के रखना है। मैं अभी उसी बात पर आता हूं। तो बेसिकली जो पांच स्वरूप का अभ्यास करते करते कैसे हम दिलाराम बाप को अपने दिल में समा सकते हैं और दिल क्या है उसकी हम गहराई में जाएंगे, है ना। दिलाराम क्यों कहते हैं और दिल क्या है, ये दिल नहीं, ये दिल तो फिजिकल दिल है ना? वो दिल क्या है जिस दिल में हम बाप को समा के रखें, तो आज हमसे भी उसी गहराई में जाते हैं। दिल क्या चीज है, पहले कहते ना किसी, कोई कहते हैं वैसे नॉर्मली भी कहते ना मेरे दिल में वो समा गया, कौन से दिल में समाया, इस वाले दिल में, इस वाले दिल में तो खून ही खून है, चार चैंबर है, खून ही खून है। अगर कोई आ भी जाए दिल में तो क्या होगा, दिल तो हर समय एक मिनट में 70 बार ऐसे होता है ना, तो रह सकता है इस दिल में, कोई इस दिल में नहीं रह सकता। आत्मा का दिल है, आत्मा का दिल क्या है, अगर ये स्थिति जो मैंने बताई दिलाराम को दिल में समा के रखना, अगर दिलाराम मेरे दिल में सदा समाया हुआ रहे तो कोई व्यर्थ आ ही नहीं सकता है, ना व्यर्थ संकल्प जाएगा ना व्यर्थ समय जाएगा। स्वराज्य अधिकारी आत्मा शक्तिशाली हो जाएगी और उसका मन बुद्धि संस्कार पे आप ही कंट्रोल हो जाएगा, उसकी कंट्रोलिंग पावर रूलिंग पावर उसके अंदर आ जाएगी और निरंतर उसका लाइट का चेहरा रहेगा। चेहरा और चलन, चेहरा माना ये चेहरा, उसमें मस्तक आ गया, नैन आ गए, मुख आ गया, तीन बातें मुख्य हैं चेहरे में, मस्तक, आत्मा चमकती दिखाई दे, नैनों में रूहानी लाइट और माइट दिखाई दे, और हमारा मुख कैसा हो, होठ कैसे हो, रूहानी मुस्कुराहट उस पर, हर्षित मुख चेहरा हो, तीन बातें चेहरे में होनी चाहिए। तो चेहरा ऐसा चेहरा सेवा करता है, रूहानियत वाला चेहरा सेवा करता है, सामने वाले को लगता है ये अलौकिक है, इनके अंदर कुछ शक्ति है ना। और ऐसे चेहरे के ऊपर क्या होता है, साथ में लाइट का ताज होता है, तो ऐसा चेहरा सेवा करता है ऑटोमेटिक, बोलने की आवश्यकता नहीं है, सामने आने वाला व्यक्ति और दूर तक भी उनके वाइब्रेशन फैलते हैं, वायुमंडल बन जाता है। और चलन माना कर्म, वो उनका देखना, उनका बोलना, उनका सुनना, उनका कर्म करना, उनका चलना, हर चीज सेवा करती है। तो अभी समय जो है वो चेहरे और चलन द्वारा सेवा करने का। तो अभी हम थोड़ा सा दिल की गहराई में जाते हैं पहले, है ना। तो दिल क्या चीज है, क्या दिल एक मंदिर भी कहते हैं ना, कहते दिल में आत्मा जो है एक अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है, इन आंखों से देख नहीं सकते, और यहां से लगभग 2.5 इंच अंदर, यहां से 3 इंच नीचे, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और पीनियल तीन ग्लैंड्स हैं, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और पीनियल तीन ग्लैंड्स हैं मुख्य, ये इनको मास्टर ग्लैंड्स कहते हैं बॉडी की, पूरी बॉडी को कंट्रोल करती, पूरे शरीर को कंट्रोल करती हैं। इनसे ऐसे हार्मोन्स निकलते हैं, सुबह सुबह 4 से 5 के बीच में 18 हार्मोन्स निकलते हैं, हाइपोथैलेमस से 9, पिट्यूटरी से 8 और एक पीनियल ग्लैंड से निकलता है, सुबह 4 से 5 के बीच में निकलता है। इसके बीच में आत्मा का निवास है, मतलब जहां से 18 हार्मोन सुबह सुबह निकल रहे हैं वो सारी बॉडी को हार्मोनाइज, आपस में ठीक काम करे, मन बुद्धि ठीक उसका आपस में मैचिंग हो जाए, सामंजस्य हो जाए, वहां पर आत्मा, ड्राइवर कहां बैठता है, आत्मा ड्राइवर है ना शरीर का, ड्राइवर कहां बैठता है, जहां पे स्टीयरिंग होता है, लाइट्स होती हैं, क्लच, ब्रेक, एक्सेलरेटर होता है ना। तो यहां पर सब कुछ कंट्रोल है, दोनों दिमाग का भी कंट्रोल है, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पीनियल का भी कंट्रोल है, पीनियल नींद के लिए आवश्यक है, हाइपोथैलेमस हमारी दोनों ब्रेन्स को कंट्रोल करता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड से ऐसे हार्मोन जो सारी बॉडी के हर थायराइड को, पैराथायराइड को, पेनक्रियास, एड्रिनल ग्लैंड सबको कंट्रोल, मतलब हमारी हड्डियां कैसे काम करेंगी, हमारी एनर्जी कितनी होगी हमारे अंदर, सब बात, उमंग उत्साह कैसा रहेगा, हर बात को कंट्रोल, शुगर कैसे कंट्रोल, शुगर ऊपर नीचे कैसी होगी, बीपी कितना रहेगा, वो सारा का सारा कंट्रोल इन्हीं ग्लैंड से होता है। तो आत्मा से साथ एनर्जी निकलती रहती है। कौन कौन सी एनर्जी है? पहली एनर्जी है ज्ञान। ज्ञान भी एक एनर्जी, मतलब ऊर्जा, ऊर्जा निकलती रहती है ना। जैसे इस बल्ब से कौन सी दो एनर्जी निकल रही है, दो ऊर्जा निकल रही है, कौन कौन सी? लाइट और हीट, लाइट और गर्मी है ना, निकल रही है ना। और सबसे ज्यादा लाइट और हीट कहां पर है? बिल्कुल बल्ब के पास में। ऐसी आत्मा से साथ ये एनर्जी निकल रही है, निरंतर निकल रही है। और वो एनर्जी जो है पहली निकल रही ज्ञान। तो ज्ञान एक ऊर्जा है। कैसे ऊर्जा है? मान लीजिए ज्ञान माने समझ। मान लीजिए मुझे कोई बात समझ में नहीं आ रही है, और मुझे कोई, सपोज मुझे कोई गुस्सा आ रहा है किसी बात पर, या मुझे कोई हेडेक हो रही है, और मुझे कुछ कहा, किसी ने कहा कि नहीं आप ये गोली खा लो, ज्ञान मिला ना गोली खाने का, तो उससे मेरा क्या हुआ? मैंने गोली खा ली, इससे दर्द ठीक हो गया। अब मुझे किसी बात पे ईगो दे अभिमान आ गया, और मुझने कहा नहीं मैं तो आत्मा हूं, ये भी आत्मा है, हम तो एक ही पिता के संतान है, तो समझ आई ना, तो मेरा जो सिर में भारीपन खत्म हो गया, नहीं ऊर्जा आई ना, फ्रेश हो गए ना। ऐसे पवित्रता भी ऊर्जा है। जैसे पेट्रोल में अगर आप कुछ मिक्स कर दो तो गाड़ी चलती नहीं है, और पेट्रोल प्योर हो तो बहुत अच्छी गाड़ी चलती है, रुकती नहीं है। तो पवित्रता ऊर्जा है, शांति भी ऊर्जा है। जैसे आप किसी शांति वाले स्थान पर चले जाओ, आपको एनर्जी मिलेगी। आप चौराहे पे जाकर खड़े हो जाओ, जब गाड़ियों की आवाज आती है बहुत, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, थक जाओगे, वैसे ही थक जाओगे। तो शांति से क्या होता है? ऊर्जा प्राप्त होती है। आप अभी थक गए हो, एक बार नहा लो तो फ्रेश हो जाओगे, तो पवित्रता शुद्ध हो गए ना, ऊर्जा मिल गई। ऐसे कोई आपको प्यार से दो शब्द बोल दे तो ऊर्जा है ना, शक्ति आ गई। आपको कोई खुशी खुशी कोई कोई खुशी की खबर मिल गई तो ऊर्जा आ गई। नहीं तो आनंद, कोई अच्छी सी चीज खिलाने को दे दे तो आनंद आ गया, तो ऊर्जा बहुत अच्छी शक्ति आ गई है ना। तो ऐसे ही कोई आप किसी कोई आपको कोई बात मुश्किल लग रही, सहन करने की बात मुश्किल लग रही, दूसरे ने सहन करके दिखा दी तो आपने सहन कर, आपके अंदर सहन करने शक्ति आ गई। तो ये सात एनर्जी है जो आत्मा से हमेशा निकलती रहती है, ज्ञान। और ज्ञान का, ज्ञान वैसे तो विस्तार बहुत बड़ा, ज्ञान का विस्तार है, किंतु ज्ञान सार रूप में क्या है? ABCD है। ज्ञान में विस्तार तो बाबा कितना कहता है, सारी धरती को कागज बना दो, सागर को शाही बना दो, और जंगल को कलम बना दो, तो भी खत्म नहीं कर सकते। किंतु सार रूप में ज्ञान है ABCD। ए फॉर आत्मा, आप भी बोल सकते हैं, ए फॉर आत्मा, बी फॉर बाबा, सी फॉर कनेक्शन, डी फॉर ड्रामा। मैं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा हूं, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु परमात्मा की संतान हूं, मेरे सर्व कनेक्शन माना संबंध उसके साथ है। मुख्य आठ संबंध है, माता, पिता, टीचर, सतगुरु, बंधु, सखा, साजन और सर्जन, आठ संबंध। मां के रूप में मुझे क्या देता है शिव बाबा? क्या देता है मां के रूप में मुझे? रूहा दिव्य लिफ्ट, एक लिफ्ट की गिफ्ट उसने दी हुई है बाबा ने, दिव्य लिफ्ट है ना, लिफ्ट की गिफ्ट। वो गिफ्ट, वो लिफ्ट क्या करती है? पैदा होने से मिल जाती है। वो लिफ्ट क्या करती है? मां क्या करती है? बच्चे के जीवन को सहज कर देती है। वो लिफ्ट एक सेकंड में सूक्ष्म तन में पहुंच जाती है, एक सेकंड में परमधाम में पहुंच जाती है। संकल्प करो, बाबा बैठा है, बाप दादा बैठे हैं, शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा आया हुआ है। संकल्प किया और एकदम दिव्य बुद्धि की लिफ्ट आई है, ये दिव्य संकल्प किया और एकदम बाबा की गोद में पहुंच गए। सूक्ष्म वतन में नहीं जाती, बाप दादा की गोद में जाती है सीधी। संकल्प करते ही मां, जैसे बच्चा मां की गोद में जाता है सीधा, तो बच्चा सीधा, आत्मा सीधी मां बाप की गोद में चली जाती, मन बुद्धि से बाबा की गोद में पहुंच जाते लाइट की बॉडी के साथ। बाप के रूप में क्या दिया उन्होंने? दिव्य तीसरा नेत्र दे दिया, ज्ञान का तीसरा नेत्र दे दिया, जिससे मैं अपने आप को ज्योति बिंदु सितारा देख सकता हूं, अपने बाप को ज्योति बिंदु सितारा देख सकता हूं, परम धाम को देख सकता हूं, सुख धाम को देख सकता हूं, और कोई भी बात मेरे सामने हो रही है उसके ड्रामा के गुह्य राज को समझ सकता हूं। ये आत्मा मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है ना, ये गुह्य राज समझ में आ जाता है। और फिर टीचर के रूप में क्या दिया, टीचर के रूप में बाबा ने मुझे सातों गुणों से भर दिया है। बाबा का वर्षा क्या है, सात गुण। पैदा होने से ही बाबा क्या भरता है, हमको सात गुणों से भर देता है, बुद्धि को बुद्धि में भर देता है, दिल में भर देता है, सात गुण भर देता है। और उससे क्या होता है, स्वराज्य, आत्मा का राज्य मन बुद्धि संस्कार पर होने लगता है। तीसरा, चौथा सतगुरु, तो शिक्षक जो है मुझे ज्ञान से भरपूर करके क्या बना दिया, स्वराज्य अधिकारी बना देता है। और सतगुरु क्या करता है, मुझे कर्म बंधन मुक्त बना देता है। जो भी मैंने कर्म किए हैं किसी आत्माओं के साथ, अपने साथ या दूसरों के साथ जो भी कर्म हुए, उन कर्म बंधन से मुक्त बना देता है। अर्थात मैं बाबा के श्रीमत पर चलता हूं, सतगुरु के श्रीमत पर चलता हूं। सतगुरु श्रीमत क्या है, पवित्र भव योगी भव, मैं उस पर चलता हूं तो क्या होता है, मेरे कर्म बंधन कटने शुरू हो जाते हैं। उन्हीं के साथ रहना होता है अभी भी, किंतु उनके साथ कर्म बंधन खींचते नहीं है। बंधु सखा के रूप में क्या किया, मेरे सारे बोझ हर लिए, जो भी मेरे बोझ थे ना, शरीर का बोझ, तन का बोझ, संबंधों का बोझ, जो भी कार्य व्यवहार करते हैं उसका बोझ सब उसने बाबा ने ले लिया। और साजन के रूप में क्या किया, साजन का क्या काम क्या होता है, सजाना। दुनिया में भी साजन क्या करते हैं, अपनी पत्नी के लिए गहने लेके आते हैं, साड़ियां लेके आते हैं, है ना। तो हमारा साजन है ना, वो हमें गुणों से सजाता है, सत्यता से सजाता है, पवित्रता से सजाता है, है ना, निर्भयता से सजाता है, अंतर्मुखता से सजाता है, है ना, हमें अंतर्मुखी बना देता। अभी पहले हम भयमुखी थे, अभी अंतर्मुखी, अंतर्मुखी माना एक सेकंड में शरीर से डिटैच हो गए, मैं आत्मा हूं इसमें टिक जाते हैं। एकाग्रता से सजाता है, सरलता से सजाता है, नम्रता से, उदारता से, मधुरता, धैर्यता, गंभीरता से, रमणीकता से, है ना, सहनशीलता, दृढ़ता, संतुष्टता, हर्षित मुक्ता, सम्मान में रहकर सबको सम्मान देना, निमित भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी, आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार, फरमान बरदार बना देता है। साजन करता है, सिखाता है हमको। खुद बाबा शिव बाबा ब्रह्मा के रूप में, ब्रह्मा के तन के द्वारा हमको सिखाता है। ब्रह्मा ने हमें गुणों का दान दिया, तो हमें साजन हमें इन गुणों से सजा देता है। और सजन के रूप में आत्मा के अंदर कितने कीड़े लगे हुए थे, पांच मुख्य कीड़े लगे हुए थे, कौन कौन से, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये पांच कीड़े, जैसे आप पेड़ की जगह को कीड़ा लग जाए तो क्या होता है, हमारे घर, हमारे यहां पर एक पेड़ लगा, आम का पेड़ लगा हुआ था, उसकी जड़ में कीड़ा लग गया। तो हमने देखा कि जब जड़ में कीड़ा लगा तो उसका हर पत्ता काला हो गया, हर पत्ते खराब हो गए, काले काले होने लगे। तो जब पता लगा इसमें कीड़ा लग गया, तो हमने उसको मालिक को बोला कि आप इसके कीड़े लग गया, इसमें आप दवाई डालो। वो दवाई डाली तो सारे, सारा पेड़ के पत्ते वाले, जो कीड़े वाले पत्ते थे, सारे निकल गए और बहुत अच्छे पत्ते आ गए। तो ऐसे ही जब आत्मा में ये पांच विकार रूपी कीड़ा लग जाता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, तो शरीर, हमारी आंखें, हमारा नाक, हमारा कान, सब कुछ, हमारी सब कर्मेंद्रियां और अंग सब क्या हो जाते हैं, काले हो जाते हैं। काले माना आंखें क्या देखती हैं, दूसरे गुण नहीं देखती है, अवगुण देखती है। कान क्या सुनते हैं, दूसरे की बुराई सुनते हैं, अच्छा ही नहीं सुनते हैं। मुख क्या बोलता है, मीठे बोल नहीं बोलता है, कड़वे बोलता है। खाना क्या खाते हैं, देवताओं का खाना नहीं, सात्विक खाना नहीं खाते, राजसिक और तामसिक खाना खाते हैं। पैर गलत रास्ते पे चलते हैं, ठीक रास्ते पे नहीं चलते, सेंटर की तरफ नहीं जाएंगे, दूसरी तरफ चले जाते हैं, है ना। तो ये आत्मा में जो पांच कीड़े लगे ना, तो इससे गड़बड़ हो गई सारी। शिव बाबा सर्जन है, वो आके इन पांचों कीड़ों को मारने की दवाई दे देता है। मनमाना भक्ति एनर्जी अंदर डालता है, इंजेक्शन लगाता है आत्मा को, एक पांचों कीड़े मर जाते हैं। अभी हम कैसे बन गए? वैसे कभी कभी मैं सोचता हूं, पहले हम सब कौन थे? वैसे भी आजकल कहानियां जो पढ़ते हैं ना, पुरानी कहानियां, तो सब नाग सांपों की कहानियां सुनते हैं, नाग देवता, नागों का एक देश था, है ना। पहले हम सब जहरीले सांप थे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से दूसरे काटते रहते थे, अहंकार से काटते रहते थे, है ना। बाबा ने क्या किया हमको, जो मदारी जो सपेरा होता है ना, सांप को पकड़ के पहले पहले क्या करता है, उसका सांप को पकड़ता है ना, फिर क्या करता है, उसके जहर वाले दांत तोड़ देता है ना। अब सांप तो सांप ही है, किंतु काटता नहीं है, अभी काटता है तो मृत्यु से जहर नहीं चढ़ेगा, है ना। तो बाबा ने भी हमारा पहले क्या किया, बनते ही क्या किया, हमारा ये जहर वाले दांत ही निकाल दिए। तो हमें ये सज्जन हमारा काम करता है। तो एक एक संबंध का सुख लेना बाबा से, आठों संबंध का सुख लेना। और डी फॉर ड्रामा, डी ड्रामा माना संसार एक नाटक है, ड्रामा है, हम इसमें हर आत्मा एक्टर है, परमात्मा इसका डायरेक्टर है, और कर्म सिद्धांत के अनुसार उसे डायरेक्ट कर रहा है। कर्म सिद्धांत के अनुसार माना, अब भले हम एक परिवार में रहते हैं, पति पत्नी है, बच्चा है, पड़ोसी है, हमसे हमारे मां बाप है ना, हमारा बिजनेस पार्टनर है, हमारे ऊपर ऑफिस में बॉस काम करने वाला है, हमने इसके नीचे काम करने वाले, कुछ हमारे नीचे काम करने वाले हैं, है ना, कुछ हमसे बड़े हैं, कुछ हमसे छोटे हैं, तो वो उनके साथ पिछले जन्म में हमने क्या किया है, अगर मैंने इस एक विशेष आत्मा के साथ कुछ गलत किया है तो इस जन्म में वो मुझे गलत करेगा, अच्छा किया तो वो अच्छा करेगा, बाबा उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। वो आपका बेटा भी हो सकता है, आपकी बेटी भी हो सकती है, सेंटर पे बहनों के रहने के बारे के साथ साथ छोटी बहन भी हो सकती है, बड़ी बहन भी हो सकती है, है ना। तो अगर वो कोई दुख सुख अगर वो दे रहे हैं तो बाबा उसमें इंटरफेयर नहीं करता है। किंतु बाबा क्या करता है, मुझे दुख को दुख देंगे, किंतु बाबा मुझे क्या करता है, सहन करने की शक्ति दे देता है, उसको दुख देने से मना नहीं करता है, ठीक है। तो ये बाबा उसको ऐसे डायरेक्ट कर रहा है ड्रामा को, इसलिए अब तक जो कुछ हुआ अच्छा हुआ है, जो हो रहा अच्छा हो रहा, जो होने वाला बहुत अच्छा होने वाला। तो ये ज्ञान एबीसीडी एनर्जी जो है आत्मा से शरीर के एक एक सेल में जा रही है, और एबीसीडी से पवित्रता आती है। मैं आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं, मेरे साथ संबंध उसके साथ है, और संसार एक ड्रामा है, इसमें जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होने वाला बहुत अच्छा, इससे मन पवित्र हो जाता है। पवित्रता आती है तो शांति आती है। शांति क्या है, शांति क्या है, अशांति क्या है, बहुत अधिक विचार करना अशांति है। जब देखो आप मन में कोई बहुत ज्यादा विचार करना शुरू किया तो मन अशांत हो जाता है ना। अभी आप बैठे बैठे सोचना शुरू कर दो अपने देह के बारे में, अभी तो मैं 60 साल 50 साल का हो गया, अभी तो ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, डायबिटीज भी हो गई है, कभी छांस भी फूलने लगता है, पता नहीं कभी हार्ट अटैक ना हो जाए, नहीं विचार बढ़ गए ना। अपने बच्चे के बारे में सोचना शुरू करो तो और विचार बढ़ गए, अपने मकान के बारे में सोचना शुरू करो तो इनकम टैक्स की तारीख 31 तारीख आ रही है, सोचना शुरू करो विचार बढ़ गए, तो मन अशांत हो जाएगा। तो शांति माना कम विचार। तो जब मन पवित्र होता है तो शांति आती है, माना कम विचार हो जाते हैं, कम विचार होने से शांति आती है, और कम विचार शांति आने से रूहानी प्रेम पैदा होता है। तब हमें क्या होता है, ऑटोमेटिक हमें फीलिंग आती है, अपनी गलतियों की फीलिंग आने लगती है कि उसने गलत नहीं किया, मैंने गलत किया था, मैंने उससे अहंकार में बात की, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो फिर प्यार उसके प्रति हम कुछ करें। प्यार की डेफिनेशन क्या है, प्यार की डेफिनेशन है केयरिंग विद डिग्निटी एंड रेस्पेक्ट, किसी की देखभाल करना, उसकी डिग्निटी माना उसको आदर से देखभाल करना, वो है प्यार। अपने से छोटे की, अपने से बड़े की देखभाल करो, किंतु किससे करो, आदर से करो, है ना, प्यार से करो, प्यार आदर से करना ही प्यार है, उसकी डिग्निटी को मेंटेन करते हुए, उससे बहुत प्यार से, उसको ही प्यार कहते हैं। तो जब हमारे अंदर से जब विचार कम हो जाते हैं और तो प्यार की फीलिंग आती है, जब प्यार की फीलिंग आती है तो उससे अतिंद्रिय सुख की अनुभूति होती है, और उससे फिर आनंद की अनुभूति होती है, और जब आनंद की अनुभूति होती है, जिस चीज में आनंद की अनुभूति होती है ना, तो उसको हम परखते हैं, ये ठीक है, ये ठीक है, राइट रॉन्ग को परखना माना, शक्ति आई ना कि इसमें आनंद आया ना, तो उसको हम ठीक समझ लेते हैं। उसको निर्णय करना, उसके बारे में निर्णय कर लेते हैं, हां मुझे यही करना है, उसके लिए विस्तार को सार में समा लेते हैं, उसके लिए सब कुछ समेट लेते हैं, उसके लिए सब कुछ सहन कर लेते हैं, उसके लिए सब कुछ सामना कर लेते हैं, उसके लिए सब कुछ समाने की शक्ति रख लेते हैं और उसके लिए सहयोग भी कर लेते हैं। जैसे जब बाबा आता है तो सारे भारत से और विदेश से लोग भाग भाग के आते हैं ना, सहन करके भी, सामना करके भी, समा के भी, सहयोग करके भी आते हैं ना। जब हम अभी तो यज्ञ बहुत बड़ा हो गया, जब खाली मधुबन में थे, ज्ञान विज्ञान भवन में 200-200 माताएं रह जाती, छोटे छोटे हॉल थे, 200-200 माताएं एक साथ रह जाती थी। सुबह से 2 बजे माताएं उठती थी, तब से स्नान करना शुरू करते थे। मधुबन में रहने की व्यवस्था सिर्फ मुश्किल से 1000 लोगों की थी और 3-3 हजार लोग आ जाते थे, 4-4 हजार लोग आ जाते थे बाबा से मिलने। अभी भी यहां पर रहने की व्यवस्था 20,000 की, तो 25,000-30,000 लोग आ जाते हैं। तो प्यार में सब कुछ समा लेते हैं। तो ये जो है आनंद की जो स्थिति अनुभव होती है ना, उसके लिए सब कुछ समाते हैं। तो सातों एनर्जी जो है वो आत्मा से निकलती रहती है, और ये दिल है जो आत्मा के पास बिल्कुल जगह है ना, उसको दिल कहते हैं। और ये सातों एनर्जी से ही हमारा आत्मा मन बुद्धि संस्कार को चलाती है। जब आत्मा सत्व प्रधान थी सत्युग में, तो सातों गुणों में भरपूर थी। सत्व प्रधान माना, सत्व माना सात, प्रधान माना फुल, भरपूर। सातों में फुल थी, तो सातों में फुल थी तो क्या था, मन बुद्धि संस्कार तीन शक्तियां आत्मा की हैं, बाहर है दिल के बाहर ही बुद्धि है, उसके बाहर मन है, मन में है, मन में चार बातें हैं, स्मृति, वृत्ति, भावना और संकल्प। और जो चीज हम बार बार करते हैं वो हमारे संस्कार बन जाते हैं। तो बुद्धि क्या है, बुद्धि निर्णय करने की शक्ति है जो दिल के एकदम बाहर है। दिल माना सात गुणों का, जहां सात गुण सबसे ज्यादा है, उसके बाहर विवेक है, विवेक माना परखने की शक्ति। बुद्धि प्रॉपर माना निर्णय करने की शक्ति, उसके बाहर चित्त है, सबकॉन्शियस माइंड है ना। अगर हमारा हम परख ठीक ठीक परखते हैं, ठीक निर्णय करते हैं, तो चित्त शांत हो जाता है, एकाग्र हो जाता है। अगर हम विवेक ठीक परखता नहीं है, बुद्धि ठीक निर्णय नहीं करती, तो चित्त चंचल हो जाता है, क्या करें क्या ना करें, कंफ्यूज हो जाता है। और उसके बाहर मन है, स्मृति, पहले स्मृति है, वृत्ति है, फिर भावना है, संकल्प है, और उसके बाहर हमारी 5 कर्मेंद्रियां हैं और ये 8 अंग हैं। तो दिल में अगर सातों एनर्जी भरपूर है, तो बुद्धि विवेक हमारा ठीक परखता है, ज्ञान के आधार पर परखता है, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्तियों के आधार पर परखता है। बुद्धि दिव्य बन जाती है, निर्णय ठीक लेती है, और बुद्धि समय पर ठीक निर्णय लेती है तो चित्त शांत और एकाग्र हो जाता है, और स्मृति में वो रिकॉर्ड होता रहता है। स्मृति में स्थिति हमारी सत्व प्रधान स्थिति बन जाती है। स्मृति में ABCD पक्का याद रहता है, आत्मा बाबा कनेक्शन ड्रामा, किसी बात पे हम क्या क्यों कैसे नहीं करते हैं। स्मृति में ABCD है तो क्या क्यों कैसे का सवाल ही नहीं है, है क्या सवाल। और वृत्ति कैसी होती है, आत्मिक, सबके प्रति आत्मिक हो जाती है। भावना सबके प्रति शुभ भावना, शुभकामना हो जाती है। संकल्प कैसे होते हैं, श्रेष्ठ, 4-5 बातें हैं संकल्प में, श्रेष्ठ, शुद्ध, शुभ, शक्तिशाली और कल्याणकारी, ऐसे संकल्प हो जाते हैं। और उससे क्या होता है, हमारा चेहरा और चलन, तो चेहरे से बाबा मस्तक में क्या ना जाता है, मस्तक में दिव्य सितारा चमकता हुआ दिखाई देता है, आंखों में लाइट और माइट नजर आती है, मुख हर्षित, चेहरे पे चमक दिखाई देती है। और ये सातों एनर्जी सारी बॉडी में फैलती रहती है तो हमारे हर कर्म अच्छे होते हैं, श्रीमत के प्रमाण, नियमों के प्रमाण, मर्यादा के प्रमाण होते हैं। ऑटोमेटिक हमारी मनसा सेवा होती है, चलते फिरते उठते बैठते मनसा सेवा होती रहती है। किंतु जब आत्मा सात गुणों में कम होती गई, जब सत्युग त्रेता बीत गया, द्वापर आया, तो सात गुण कम हो गए, तो आत्मबुद्धि, तो अभी क्या हुआ, मन ने क्या किया, मन के संपर्क में कर्मेंद्रियां थी, आंख, नाक, कान, मुख थे, उसने 5 तत्वों को, 5 बाहर देखना शुरू किया, अंतर्मुखी की बजाय बाह्य मुखता आने लगी। आकाश में क्या है, सूरज में क्या है, वायु कहां तक है, आग धरती पानी समुद्र के नीचे क्या है, धरती के नीचे क्या है, ढूंढने लगे। पांच तत्वों का ज्ञान ले, इसी को साइंस कहते हैं। और वो आने लगा, है ना, हमारी स्मृति वृत्ति भावना संकल्प में वो आने लगा। और साथ साथ हमारे अब विवेक कंफ्यूज हो गया, बुद्धि निर्णय नहीं कर पा रही थी, चित्त चंचल हो गया, इसलिए आत्मा का राज्य खत्म होता गया। बुद्धि हमारी विकारों में जाने लगी, देह की तरफ, देह पांच विकार पांच तत्वों से बनी हुई थी, बुद्धि देह में जाने लगी, काम विकार आ गया, क्रोध आने लगा, ये चीज मेरी है ना, इसको क्यों छुआ, क्रोध आने लगा, मुझे अभी इसके लिए मुझे इकट्ठा करना है, मुझे ये बनाना है, तो लोभ आने लगा, ये मेरा बच्चा है, इसके लिए मुझे ये मेरे लिए ये ऐसा है, ये मेरी है, ये मेरा है, उसके लिए मोह पैदा होने लगा। और जो चीज इकट्ठी हो गई थी ना हमारे पास फिजिकल, उसके लिए अहंकार पैदा होने लगा, इस तरह विकार आने लगे, शक्तियां कम होती चली गई, आत्मा स्वराज्य अधिकारी की बजाय पराधीन होती चली गई, मन का राज्य हो गया, कर्मेंद्रियों का राज्य हो गया। तो सात गुणों से आत्मा चला रही थी, मतलब दिल में आराम खत्म हो गया, सात एनर्जी कम हो गई, मन बुद्धि संस्कार में आराम खत्म हो गया, हमारे शरीर में भी आराम खत्म, बेआराम हो गया, डिजीज माना दिस इज लॉस ऑफ ईज, मतलब आराम खत्म हो गया, मन को भी आराम खत्म हो गया, बॉडी को भी आराम खत्म हो गया। उसको दिलाराम क्यों कहते हैं शिव बाबा को, क्योंकि दिलाराम माना दिल को आराम देने वाला। उसका दिल कैसा है बाबा का, शिव बाबा जो है तो वो भी सूक्ष्म ज्योति बिंदु, किंतु ज्ञान का सागर है, पवित्रता का सागर है, शांति का सागर, प्रेम का सागर, सुख का सागर, आनंद का सागर, शक्तियों का सागर है, तो सातों का सागर है ना वो। तो जब हम उसको याद करते हैं तो हमारे दिल में आराम आने लगता है, दिल में आराम आना, दिल में सातों एनर्जी आने लगती है। जब सात एनर्जी आने लगती है तो क्या होता है, विवेक काम करने लगता है, जो विवेक आसुरी विवेक हो गया था अब वापस विवेक कैसा हो जाता है, ईश्वरीय विवेक हो जाता है। जो बुद्धि भ्रष्ट बुद्धि हो गई थी अब वो बुद्धि दिव्य बुद्धि हो जाती है, दिव्य माना दैवी गुणों पर आधारित बुद्धि, मतलब सत्यता पर आधारित बुद्धि, निर्भयता पर आधारित बुद्धि, अंतर्मुखता पर आधारित बुद्धि, अंदर देखने लगते हैं हम अभी बाहर देखते थे अभी अंदर देखने लगते हैं, क्योंकि आत्मा आप सात गुणों से विवेक को सात गुण मिलने शुरू हो गए, यथार्थ ज्ञान मिलना शुरू हो गया, बुद्धि को दिव्यता दैवी गुण मिलने लगे, और अभी चित्त हमारा शांत हो जाता है, विचार चलने कम हो गए, अब विचार ज्यादा नहीं चलते हैं, अब स्मृति में वापस नई रिकॉर्डिंग चालू हो जाती है, पुरानी रिकॉर्डिंग पांच तत्वों की रिकॉर्डिंग थी, अभी आत्मा की रिकॉर्डिंग, बाबा ने क्या कहा वो रिकॉर्डिंग होने लगती है, वृत्ति धीरे धीरे फिर आत्मिक बननी शुरू हो जाती है, भावनाएं फिर शुभ होने लगती हैं, संकल्प फिर श्रेष्ठ बनने लगते हैं। तो जितना जितना इसको दिलाराम इसलिए कहते हैं बाबा को, क्योंकि वो सात एनर्जी हमारे अंदर भरता है, जब उसको याद करते हैं, अपने को आत्मा समझ के उसको याद करते हैं, तो सातों एनर्जी हमारे अंदर आने लगती है, और दिल में एनर्जी भरने से हमारे दिल को भी आराम पहुंचने लगता है, और मन बुद्धि संस्कार हमारे परिवर्तन होने लगते हैं। पर दिलाराम को कौन दिल में समा सकता है, जिसकी दिल सच्ची हो और साफ हो, झूठी दिल में बाबा आ सकता है क्या, झूठी दिल में बाबा नहीं आ सकता है, सच्ची दिल में बाप आ सकता है। सच्ची दिल किसे कहते हैं, सच्ची दिल माना जिस दिल में ये अभी जिस दिल में ये चार बातें समाई हो, ABCD समाया हो, वो ABCD समाने के लिए हमें तीन बातें चाहिए, एक तो अभ्यास चाहिए, दूसरा पवित्रता चाहिए, और तीसरा बेहद की वैराग्य वृत्ति चाहिए, तब हमारी दिल सच्ची बनेगी। और जब सच्ची दिल बन जाएगी तो क्या होगा, ऑटोमेटिक हमारे अंदर वो इतनी एनर्जी आ जाएगी बाबा से, सात गुण इतने भर जाएंगे हमारे अंदर, तो ऑटोमेटिक हमारे अंदर हमारा मन बुद्धि संस्कार हमारे कंट्रोल में आ जाएगा, हम स्वराज्य अधिकारी बन जाएंगे। तब हमसे ऑटोमेटिक कोई व्यर्थ नहीं होगा। तो इसके लिए पहली बात अभ्यास, क्या अभ्यास करना है, चलते फिरते उठते बैठते अपने सारा दिन ये अभ्यास करना है कि अपने सत्य स्वरूप में टिकने का अभ्यास करना है, मैं कौन हूं सारा दिन, मतलब जब भी कोई खाना खा रहे हैं, चल रहे हैं, सुबह अमृत वेला भी, मैं कौन हूं, सारा दिन चलते फिरते ये अभ्यास करते रहे, काम करते भी अभ्यास करते रहे, मैं कौन हूं, मेरा कौन है, मेरा सत्य अपने सत्य अब बाप के सत्य स्वरूप में टिकने का अभ्यास, वो मेरा बाप है, हाईएस्ट ऑफ द हाईएस्ट, होलीएस्ट ऑफ द होलीएस्ट, वो बाप जिसका कोई बाप नहीं है, वो टीचर जिसका कोई टीचर नहीं है वो मेरा टीचर है, वो गुरु जिसका कोई गुरु नहीं है वो मेरा टीचर, वो मेरा गुरु है, अविनाशी है, एवर प्योर है, सदा ही प्योर है, सारे विश्व का मालिक है, उसकी स्मृति में टिकते रहना, बार बार अभ्यास करना, ड्रामा को साक्षी होकर देखते रहना, इंटरफेयर नहीं करना, ये ऐसा क्यों करता है, ऐसा क्यों कर, नहीं उसका पार्ट है, मैं डायरेक्टर नहीं हूं, परमात्मा उसका डायरेक्टर है। कई बार लौकिक परिवार में हम क्या देख लेते हैं, जो पति होता है ना, बाप होता है ना, वो समझता मैं डायरेक्टर हूं, ये बच्चा मेरे हिसाब से चलना चाहिए, ये पत्नी मेरे हिसाब से चलनी चाहिए, कई बार पत्नी भी समझ लेती है कि मेरे हिसाब से मैं डायरेक्टर हूं, मेरे को मेरे से हिसाब से चलना चाहिए, नहीं, डायरेक्टर शिव बाबा है, तो वो डायरेक्ट कर रहा है ना, इसलिए क्या क्यों करने का मतलब ही नहीं है। तो सारा दिन ड्रामा को साक्षी होकर देखना, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा, जो होने वाला बहुत अच्छा, तो सारा दिन ये एबीसीडी का अभ्यास, चलते फिरते उठते बैठते करते रहो, एक एक संबंध का अभ्यास करते रहो, सच्ची दिल मन एबीसीडी का अभ्यास, अभ्यास जितना इसका अभ्यास करते जाएंगे, एबीसी मना साथी और डी मना साक्षी, तो जितना साथी रहेंगे, बाप के साथी रहेंगे, आत्मा बाबा कनेक्शन और डी फॉर ड्रामा साक्षी, तो उतना हमारे अंदर सातो एनर्जी बढ़ती जाएंगे। और दूसरा पवित्रता, संपूर्ण पवित्रता, मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क तक पवित्र, स्वपन तक पवित्रता, तो मनसा जितनी हमारी पवित्र होती जाएगी, मनसा माना कोई व्यर्थ संकल्प भी ना आवे, जैसे इसकी निशानी क्या है, जब मेरी मनसा पवित्र है तो मुझे सुख शांति की अनुभूति होती है, कि तुम मुझसे दूसरों को भी सुख शांति की अनुभूति हो, दूसरों को सुख शांति की अनुभूति मुझसे क्यों नहीं होती, अगर मैं दूसरे में अशुद्ध देखता हूं कुछ, ये ऐसा क्यों करता है, इसने ऐसा क्यों बोला, उसका पार्ट ड्रामा में है बोलने का ना, कि तुम मैं उसमें शुद्धता ना देखूं ना, साक्षियों के देखूं ना, तो क्या होगा, उसको भी मेरे से सुख शांति की अनुभूति होगी। तो और तीसरी बात है बेहद की वैराग्य वृत्ति, तो बेहद की वैराग्य वृत्ति माना, वैराग्य का मतलब क्या है, राग से वैर, किसी भी व्यक्ति में, वस्तु में, वैभव में राग ना हो, राग माना अटैचमेंट ना हो। तो जब हमारी स्थिति यह होगी, अभ्यास, संपूर्ण पवित्रता और तीसरा बेहद की वैराग्य वृत्ति, तो हमारी दिल सच्ची हो जाएगी, और जितनी सच्ची दिल होगी उसमें दिलाराम आ जाएगा। दिलाराम माना, दिलाराम कौन है, ज्ञान का सागर है, सागर आ जाएगा मेरे इसमें, यहां पर सागर माना एबीसीडी का सागर आ गया, ज्ञान का सागर बजेगा अंदर से अपने आप, आत्मा, मैं आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं, मेरे सर संबंध उसके अनुभूति होती रहेंगी हमेशा, डी फॉर ड्रामा, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होना, ये सारा दिन पवित्रता का सागर अंदर आ जाएगा, सारी अपवित्रता निकल जाएगी, सारे विक्रम विनाश हो जाएंगे, शांति का सागर आ जाएगा, हर समय शांति अनुभूति होती रहेगी, आत्मा एकदम शांत शीतल हो जाएगी, इतना बड़ा ऑरा हो जाएगा, मतलब ऑरा माना समझते हैं आभा मंडल, बहुत बड़ा आभा मंडल, जैसे बाबा आता है तो सारा हॉल क्या होता है, एकदम शांति के वाइब्रेशन फैल जाते हैं, पवित्रता के वाइब्रेशन फैल जाते हैं। ऐसे ही फिर हम जहां भी जाएंगे, अपने घर में रहेंगे या जहां काम करेंगे, वहां भी शांति का वातावरण बन जाएगा, पवित्रता का वातावरण बन जाएगा, अतीन्द्रिय सुख के रूहानी प्रेम का वातावरण बन जाएगा, अतीन्द्रिय सुख का सागर अंदर आ जाएगा, आनंद का सागर अंदर आ जाएगा, शक्तियों का सागर अंदर आ जाएगा। और शरीर कैसे चल रहा है हमारा, ज्ञान से दिमाग चलता है, पवित्रता से हमारी पांच कर्मेंद्रियां, इम्यून सिस्टम चलता है, शांति से फेफड़े चलते हैं, लंग्स चलते हैं, प्रेम से हार्ट चलता है, खुशी से हमारा लीवर और पेट चलता है, आनंद से हमारे हार्मोन्स चलते हैं, थायराइड, पैराथायराइड, पैनक्रियास, एड्रिनल ग्लैंड चलती है, और शक्तियों से हमारी हड्डियां और ज्वाइंट्स चलते हैं। तो जब सागर हमारे अंदर आ जाएगा तो ये पुराना शरीर, पुरानी गाड़ी, जो खटारा गाड़ी है, खटारा समझते हैं ना, खटारा गाड़ी है ना, धक्का लगा के चलती है ना, फिर इतना सागर आने से क्या हुआ, ये खटारा गाड़ी भी अच्छी चलेगी। भले शरीर में आपको रोग है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, मोटापा है, कोलेस्ट्रॉल है, घुटने काम नहीं करते हैं, वो पर खुशी की वो शक्तियां जो बाबा से मिलेंगे, सात गुण मिलेंगे, भरपूर मिलेंगे, तो शरीर भी साथ देगा। जैसे हमारी दादियां हैं, इतनी बड़ी उम्र होने के बाद भी दादी जी 96 की एज में भी है ना अमृत वेले योग कराने हमको आती है, है ना? हम ले आप लेट आ जाएंगे, दादी टाइम पर आती है ना? हमारे जो बड़े भाई बहन है उन्होंने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है कि उनका शरीर पुराना होने के बाद भी हमसे ज्यादा एक्टिव है, क्योंकि साथ उन्होंने दिलाराम को दिल में समा लिया है। दिल सच्ची और साफ रखिए, साफ दिल माना एक बाप दूसरा, एक मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। कोई बात हो ना डॉक्टर याद नहीं आना चाहिए, अपना बेटा याद ना आए, बेटी याद ना आए, बाबा याद आए। सिर में दर्द हो रहा ना तो बाबा को बुलाओ, बाबा आ जाओ मालिश कर दो, तो सिर मालिश कर देगा। दिल में दर्द हो रहा तो बाबा आ जाओ, प्यार का सागर है ना, दिल दर्द ठीक हो जाएगा। ये हार्ट के प्रोग्राम में कैसे ब्लॉकेज खुलती हैं, जब वो दिलाराम को अपने दिल में समा लेते हैं ना तो क्या होता है, वो फ्लड आती है, सुनामी होती है ना, सुनामी जैसे आई थी, सुनामी, सुनामी में क्या होता है, जितनी भी कंस्ट्रक्शन टूट गई ना, सारे मकान थे सागर की, सब टूट गए, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी टूट गई, किंतु जैसे मतलब जब बाबा जब आता है तो हमारे दिल में क्या होती है, हमारे आर्टरी में ब्लॉक क्या है, अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है ना। आपके हाईवे पे कोई मकान बना दे, कोई कमरा खड़ा कर दे, तो अनऑथराइज है ना। तो जब वो फ्लड आती है, सुनामी आती है प्यार की, तो हार्ट में ब्लॉक अपने आप ही साफ हो जाते हैं। ऐसे अगर आपकी कोई और बीमारी है, फेफड़ों में बीमारी है, सांस की बीमारियां, सांस की नलियां सिकुड़ जाती हैं, अस्थमा किसे कहते हैं, सांस की नलियां सिकुड़ जाती हैं, तो जब शांति के सागर अंदर आएगा है ना, शांति की सुनामी अंदर आएगी तो क्या होगा, सांस की नलियां खुल जाती हैं, पेट में अल्सर है आपको है ना, लीवर ठीक काम नहीं करता है, खुशी की सुनामी आएगी तो क्या होगा, लीवर ठीक हो जाएगा, आंतें ठीक काम करने लगेंगी। आपकी कमर की दर्द होती है, गर्दन की दर्द होती है, घुटनों की दर्द होती है, शक्तियों की सुनामी है ना, ठीक है, सुनामी समझते हैं ना, सागर बड़ी ऊंची लहरें, 100-100 फुट की लहरें लेके आ रहा है, आप समझो सागर मेरे अंदर से निकल गया है ना, तो क्या होगा। तो ऐसे चलते फिरते उठते बैठते स्मृति स्वरूप रहेंगे ना, सारा दिन इसी नशे में रहो। देखो एक बात होती है, सपोज मेरी जेब में सिर्फ 50 रुपया है और मुझे कोई बड़ा काम करना है, मैं कर नहीं सकता हूं, क्योंकि मेरे पास लाखों रुपया, करोड़ रुपया है, मुझे वो एक मकान मुझे बनाने को दिया, मुझे मकान बनाना है 1 महीने में, पैसे है नहीं, 1 लाख रुपया सिर्फ है, तो लेबर क्या करता हूं, एक लेबर लगाता हूं, एक मिस्त्री लगाता हूं, एक मजदूर लगाता हूं, तो मकान 6 महीने बना के तैयार भी नहीं करते, 1 साल में बनाते, क्योंकि पैसे कम है, क्योंकि मेरे पास करोड़ रुपया है, तो मैं इकट्ठे 100 मजदूर 100 मिस्त्री लगा देता हूं, ठीक है, और सामान की कमी नहीं होती है, तो मकान जल्दी से तैयार हो जाता है। तो जब ये सातों गुण भर जाते हैं ना, तो ऑटोमेटिक हर काम सहज हो जाते हैं। इस समय एनर्जी का क्राइसिस है, इसी है हर इंसान तरफ रहा है, दुख अशांत है, दुखी अशांत है, पुकार रहा है, और हमको बाबा के बच्चों को, हम आधार मुहूर्त उधार मुहूर्त बच्चे हैं, तो ऐसा बन करके अपने अंदर सातों एनर्जी भर लो, और उसके लिए 3 बातें, अभ्यास करते रहो सारा दिन, संपूर्ण पवित्रता, स्थूल तो कर्मेंद्रियों में पवित्रता लेके आ गए हम, ब्रह्मचर्य धारण कर लिया, किंतु अभी ब्रह्माचारी बनना, जो ब्रह्मा बाबा ने किया, सारी सारी जिम्मेवारी संभालते हुए दिख किया, फरिश्ता बन के किया, हमको उनको फॉलो करना, किसी भाई बहन को फॉलो नहीं करना, ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना, जैसा उन्होंने किया, अपने मस्तक में और नैनों में बाप को समाया, सागर को समाया, ज्ञान के सागर को समाया, पवित्रता के सागर को समाया, है ना। शांति के, रूहानी प्रेम, अतिंद्रिय सुख, आनंद, शक्तियों के सागर को समाया और उससे उन्होंने यज्ञ को चलाया, आज भी चला रहे हैं। तो हम भी ऐसे बाबा को फॉलो करके दिलाराम को दिल में समा के अभ्यास, संपूर्ण पवित्रता और तीसरा बेहद की वैराग्य वृत्ति। क्योंकि बेहद की वैराग्य वृत्ति क्यों, कुछ भी रहना नहीं है। आज भी मुरली में था ना, सब जाना है, सब खत्म हुआ, जिन आंखों से जो दिखाई दे रहा सब खत्म होने वाला है। संबंधी, ये देह भी नहीं रहने वाली, और तो क्या रहेगा, ये देह भी रहेगी नहीं, है ना। देह के संबंधी नहीं रहेंगे, देह के स्वभाव संस्कार, देह के पदार्थ भी नहीं रहेंगे, सब जाने वाला है। अभी तो बाबा दो हफ्ते, दो मास पूरे हो गए ना, कल बाबा, परसों बाबा को होमवर्क देना है। बाबा पूछेगा हमसे, बच्चे होमवर्क किया? तो अभी हमारे पास दो दिन बाकी है, आज 17 तारीख है ना, 3 दिन बाकी है, 18 आज का दिन थोड़ा सा बाकी, 18, 19, 20 तीन दिन बाकी है। तो 3 दिन भी अगर हम निरंतर ये अभ्यास करेंगे स्मृति स्वरूप में टिकने का, दिलाराम को दिल में बसा के रखेंगे, समा के रखेंगे, सच्ची दिल रखेंगे अपनी, साफ दिल रखेंगे, और ये अभ्यास निरंतर ABCD का अभ्यास करते रहेंगे, तो भी बाबा को हम गर्व से हाथ उठा सकेंगे, बाबा हमने ये काम किया है ना। कौन कौन हाथ उठाएगा, हाथ उठाओ जो बाबा को परसों हाथ उठा के दिखाएंगे कि बाबा, 3 दिन का अभ्यास भी करेंगे तो हाँ तो हो जाएगा ना। नहीं, कई कई बच्चे ऐसे होते हैं सारा साल नहीं पढ़ते हैं, पेपर से पेपर वाले दिन, पेपर के 2-3 दिन पहले पढ़ के सब कुछ दिन रात पढ़ के पास हो जाते हैं, है ना। तो अभी हम सबको पास होंगे, जो पास होंगे हाथ उठाओ, हाँ सब पास होके दिखाना, ठीक है। ओम शांति। चलिए अभी हम सभी इसका योग करना है।